அது பிரேம புருஷோத்தம் சத்யநந்தன் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு கி ஆவிர்பாவ திதி ஹை. ஔர் இஸ் அவசர பர் ஹம் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு கி ஆவிர்பாவ கி காரணோ கி சம்பந்த மே சர்ச்சா கரேங்கே. இஸ் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு கி ரூப மே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண க்யோ அவதரித் ஹுயே. तो जिस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है कि अपने चैतन्य चरितमृत में ये विदग्ध माधव का यह श्लोक उन्होंने उल्लेख किया है जिसको श्री रूप गोस्वामी ने रचना की थी. अनर्पित चरिंचिया करुणया अवतीर्ण कलौ சமர்ப்பயித்தும் உன்னத உஜ்ஜல ரசம் சோபக்தி ஸ்ரீயம் ஹரிபுரட சுந்தர திதி கதம்ப சந்தீபித சதா ஹிருதய கந்தரே ஸ்புரத்துவ சதிநந்தன. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமியே ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு கி ஸ்துதி யா வந்தன கர்த்தே ஹுயே உன்கே आविर्भाव के कारणों के संबंध में बता रहे हैं. अनर्पित चरिंचिरा करुणया अवतीर्ण कलौ. वही सचिनंदन सती माता के पुत्र के रूप में जो अवतरित हुए थे वो सदा सर्वदा हृदय के अंदर हमारे हृदय के भीतर सदा सर्वदा स्फुरित हो अर्थात सदा सर्वदा मैं उनका स्मरण कर सकूं. और वो सचिनंदन कौन है न अनर्पित चरिंग चिरात करुणया अवतीर्ण कलो. इस कलयुग में जो करुणा पूर्वक कलियों के लोगों पर करुणा प्रदर्शन करने के लिए कृपा प्रदर्शन करने के लिए जो अवतरित हुए थे और वे कैसी कृपा थी जो अनर्पित चरिंग चिरात जो अनेक काल से जिस कृपा का वितरण भगवान ने नहीं किया था यह कृपा अनर्पित थी अर्पित नहीं हुई थी. तो अनर्पित चरित चिरात तो इस चीर काल से जो कृपा वितरित नहीं हुई थी उस कृपा को वितरित करने के लिए इस कलयुग के लोगों को प्रदान करने के लिए इस सचिनंदन के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए. तो ये कौन सी कृपा थी जो चिरकाल से वितरित नहीं हुई थी. कहते हैं समर्पयितुं उन्नत उज्ज्वल रसम सो भक्ति श्रियम. तो ये जो उन्नत उज्ज्वल रस भगवान श्री कृष्ण के साथ भक्त लोग कई रसों से संबंधित होते हैं और हर भक्त अपने रस को श्रेष्ठ मानता है. जो जिस रस का भक्त है कोई वात्सल्य रस का भक्त है कोई दास्य रस का भक्त है कोई सख्य रस का भक्त है कोई माधुरी रस का भक्त है कोई शांत रस का भक्त है तो हर भक्त अपने अपने रस को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि उसी रस में ही वो आनंद का अनुभव करते हैं. किंतु यदि निरपेक्ष रूप से देखा जाए तो इन रसों में माधुर्य रस को सर्वश्रेष्ठ बताया गया क्योंकि भगवान कृष्ण इस रस के द्वारा वशीभूत होते हैं. इसलिए कहते हैं समर्पितुं उन्नत उज्जवल रसम, तो ये माधुर्य रस को उज्जवल रस भी कहा गया है। ये दीप्तिमंत रस है अर्थात नित्य नवनवायमान है। नित्य इस रस में आनंद सागर की वृद्धि होती है, तो इस रस को इसलिए उज्जवल रस कहा गया है। और इस रस को प्रदान करने के लिए, इस प्रेम रस, भक्ति रस, वस्तुतः ये ब्रज भक्ति की ओर उल्लेख किया जाता है, ब्रज प्रेम। ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष अवदान था। इस ब्रज प्रेम को भगवान ने किसी अवतार में प्रदान नहीं किया था, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कलयुग के लोगों पर कृपा करने के लिए, जबकि कलयुग के लोग इस रस को प्राप्त करने के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी भगवान की इतनी कृपा है कि चिर काल से जिस प्रेम को उन्होंने प्रदान नहीं किया था, उसी प्रेम को इस कलयुग के लोगों को प्रदान कर रहे हैं। इसलिए वह महाबदान्य अवतार है, योग्य अयोग्य का विचार नहीं कर रहे हैं। कौन इस रस को प्राप्त करने के लिए योग्य है, कौन योग्य नहीं है, इसका विचार नहीं कर रहे हैं। और इसका प्रदान किस प्रकार कर रहे हैं, न संकीर्तन के माध्यम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इस हरिनाम के माध्यम से इस ब्रज प्रेम को प्रदान कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम को प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार में श्री चैतन्य महाप्रभु जब कभी भी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते थे, उसको कोई उनके मुख से श्रवण कर लेता था, उस श्रवण करते ही वो कृष्ण प्रेम में उद्बुद्ध हो जाता था, कृष्ण प्रेम में मग्न हो जाता था। और वह व्यक्ति जब जाकर और किसी को इस हरे कृष्ण महामंत्र को सुनाता था, वह व्यक्ति भी कृष्ण प्रेम में मग्न हो जाता था। यही चैतन्य महाप्रभु के प्रेम प्रदान की विधि थी। वो जिस किसी को देखते थे बोलते थे, हरे कृष्ण बोलो बोलो, कृष्ण भजा कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलने के लिए प्रेरित करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। और जब कोई बोलता था उसको आलिंगन करते थे, इस प्रकार प्रेम का संचार करते थे, कृष्ण प्रेम का संचार। तो ये एक विलक्षण अवतार है भगवान का, जो स्वयं अपना प्रेम प्रदान कर रहे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है कलयुग के लोगों पर। तो इसलिए कहते हैं कि स्वभक्ति स्वयं जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे भक्ति के विभिन्न अंग हैं, किंतु विशेष रूप से जैसे साधारण रूप से लोग जो भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान को प्रभु मानते हैं और अपने को उनका सेवक, ऐसे भक्त जब भगवत धाम को प्राप्त करते हैं तो वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से प्रभावित है। किंतु भगवान कृष्ण कहते हैं ऐश्वर्य ज्ञानते सब जगत मिश्रित, ये सारा जगत मेरे ऐश्वर्य ज्ञान से भक्ति कर रहा है। ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर प्रीत, और इस ऐश्वर्य ज्ञान के कारण ऐसे भक्त में मेरा प्रेम शिथिल हो गया है, अर्थात मेरे प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं हो पाती है। ऐसे ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित भक्ति करने पर वो तो वैकुंठ को प्राप्त होते ही है, किंतु इसमें मेरा प्रेम नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं ऐश्वर्य ज्ञान विधि भजन करिया वैकुंठ के जाए चतुर्विध मुक्ति पाया। तो जो ऐश्वर्य ज्ञान से प्रभावित है वो विधि पूर्वक मेरा भजन करते हैं, भक्ति की विधि का अनुसरण करते हैं, और उसका परिणाम क्या है कि चार प्रकार की मुक्ति को प्राप्त होता है, सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य और शास्त्री। ये चार प्रकार की मुक्ति को भक्त लोग प्राप्त होते हैं। सायुज्य मुक्ति को भक्त लोग ग्रहण नहीं करते। तो इस प्रकार विधि भजन करके ये वैकुंठ को चार प्रकार की मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। किंतु कह रहे हैं कि विधि भक्त ब्रजभाव नहीं पाई तो नहीं सकती, किंतु इस विधि भक्ति से कोई ब्रजभाव को प्राप्त नहीं कर सकता। और ये चैतन्य अवतार में यही ब्रजभाव ब्रज प्रेम प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार हो, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अनर्पित चरिं चिरात करुणया अवतीर्ण करो। इस ब्रज प्रेम को ब्रज भक्ति को जिस भगवान ने कभी प्रदान नहीं किया था उसी को प्रदान करने के लिए आए। तो हरि तड़ सुन द्वितीय कदम्ब संदीपित है, तो वही भगवान हरि जिनका वर्ण पुरट सुंदर, ये कांचन वर्ण सोने के वर्ण के समान थे। भगवान कृष्ण जो श्याम सुंदर हैं वो गौर सुंदर के रूप में अवतरित हुए, तो ये श्याम वर्ण के थे, किंतु इस अवतार में गौर वर्ण धारण किए, इसलिए उनको गौरांग कहा गया। और कैसे गौर वर्ण? तप्त कांचन, जैसे सोने को अग्नि में रख दिया जाता है, अग्नि में रखने पर सोना जब तप जाता है जिस प्रकार का वर्ण होता है, पीला सा वर्ण, तप्त कांचन वर्ण, राधारानी का वर्ण ऐसा ही है, तप्त कांचन गौरांगी। और श्री चैतन्य महाप्रभु तप्त कांचन गौरांग, तो ये जो गौरांग उनके शरीर से जो तेज निकल रहा था, तो ये चारों ओर आलोकित कर रहे थे अपने तेज से। तो वही सचिनंदन हमारे हृदय के अंदर में, हृदय की गुफा में स्फुरित हो, सदा सर्वदा निवास करे, सदा सर्वदा मैं उनका स्मरण करता। तो इस श्लोक के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के उद्देश्य के संबंध में श्री रूप गोस्वामी उल्लेख कर रहे हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का एक कारण भी है। तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के दो प्रकार के कारण है, एक बाह्य कारण, दूसरा अंतरंग कारण। तो बाह्य कारणों में यह एक कारण है, जो ब्रज भक्ति, ब्रज प्रेम या प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में ब्रजेन्द्रनंदन श्री कृष्ण अवतरित हुए। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करने के उपरांत या अपने स्वधाम गोलोक वृंदावन में जाते हैं, तो वहां जाकर वो सोचते रहते हैं। तो क्या सोचते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि मैंने इस कृष्ण लीला में मैंने भगवत गीता का उपदेश दिया और भगवत गीता के उपदेश का अंतिम उपदेश क्या था कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मैंने लोगों को ये उपदेश दिया कि सारे धर्म को त्याग करके मेरी शरण में आ जाए, किंतु मैंने यह उपदेश मात्र दिया है और कलयुग के लोग इस उपदेश को कैसे जीवन में पालन करेंगे, उनके लिए आदर्श कहां पर है कि भगवान के शरण में कैसे जाना होता है, उसका आदर्श मैंने प्रस्तुत नहीं किया है। तो इसलिए जब तक मैं स्वयं भगवान की शरण में कैसे जाना है या करके जनता के सामने आदर्श स्थापित ना करूं तो कली के लोग इसकी शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे। अतः भगवान कृष्ण सोच रहे हैं वैकुंठ गोलक वृंदावन में जाकर कि अपनी करी मुक्ति भव अंगीकार, इसलिए मुझे और एक बार जाना पड़ेगा और एक बार अवतरित होना पड़ेगा। और किस रूप में अवतरित होना पड़ेगा? मेरे भक्त के रूप में। मैं स्वयं भगवान किंतु भक्त बनकर इस बार अवतरित होऊंगा। किस लिए भक्त बनकर अवतरित होंगे? कहते हैं आपने करी मु भक्त भाव अंगीकार, आपने आचरी भक्ति सिखाई मु सवारे। मैं इसलिए भक्त भाव को अंगीकार करूंगा कि मैं स्वयं भक्ति का आचरण करूंगा और दूसरों को अपने आचरण से शिक्षा प्रदान करूंगा। तो यह शिक्षा आचरण से दी जाती है, केवल बोलने से कोई ग्रहण नहीं करता है। जब तक हम अपने आचरण से जो बोल रहे हैं उसको उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे, उसका आदर्श स्थापित नहीं करेंगे, तो लोग इसको ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं स्वयं भक्ति का आचरण करके लोगों को सिखाऊंगा कैसे भगवान की शरण में जाना है, कैसे भगवान की भक्ति आचरण करना है। तो भक्ति शिक्षण ये दूसरा उद्देश्य है भगवान के आविर्भाव का। इन बाह्य कारणों में एक है भक्ति शिक्षण, दूसरा है प्रेम भक्ति प्रदान। और पुनः भगवान कृष्ण सोच रहे उस समय, क्योंकि युग धर्म प्रचार का समय हो गया था, हर युग में भगवान अवतरित होते हैं युग धर्म प्रचार करने के लिए। तो हर युग में एक एक युग धर्म होता है। इस प्रकार सत्य त्रेता द्वापर कली, तो चार युगों में चार प्रकार के युग धर्म है। तो इसलिए कहा गया है कि सत्य युग में कृते यद्धायतो विष्णु, सत्य युग में कृते युग अर्थात सत्य युग, उसमें भगवान का ध्यान, ये युग धर्म था। कृते यद्धायतो विष्णु त्रेतायां गजतो मखई, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, यज्ञ की विधि के द्वारा भगवान की उपासना होती है, वो युग धर्म है त्रेता युग का। द्वापर परिचर्यायाम एवं द्वापर में भगवान की उपासना अर्चना, ये द्वापर का युग धर्म है। कलौ तद हरि कीर्तनात्, और कलयुग का युग धर्म हरि कीर्तन, हरि नाम का संकीर्तन। तो चार युगों में युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण हर द्वापर में अवतरित नहीं होते। जिस प्रकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है कि ब्रह्मा के एक दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु शासन करते हैं, एक मनु का शासन काल है 71 दिव्य युग, एक दिव्य युग होता है सत्य त्रेता द्वापर कली मिलाकर जितना समय हुआ, जितना वर्ष हुए ये एक दिव्य युग का समय है। तो एक दिव्य युग का समय 43 लाख वर्ष करीब होगा। तो इस प्रकार 71 दिव्य युग का समय एक मनु का शासन का होता है और ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु इस प्रकार शासन करते हैं। तो ब्रह्मा का एक दिन 1000 दिव्य युग होता है। तो जब ब्रह्मा के एक दिन में सप्तम मन्वंतर आता है, वैवस्वत मन्वंतर, अभी वैवस्वत मन्वंतर चल रहा है, ब्रह्मा जी के सप्तम मन्वंतर चल रहा है एक दिन का। तो इस सप्तम मन्वंतर में जो 28वां दिव्य युग आता है, उस दिव्य युग में जो द्वापर आता है, उस द्वापर में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। अब अभी अभी वैवस्वत मन्वंतर का 28वां दिव्य युग अभी चल रहा है और इसमें अब द्वापर गया है, 28वें दिव्य युग का द्वापर जिसमें भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे। और जिस द्वापर में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं उसके बाद में जो कलयुग आता है, उस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। तो इसलिए इस कलयुग जो इस द्वापर के बाद आया है इसमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए, इस कलयुग को इसलिए धन्य कलि कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के कारण यह कलयुग धन्य हो गया और इस कलयुग के लोग धन्य हो गए, क्योंकि अन्य युगों में साधना करनी पड़ती थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति को योग्य होना पड़ता था, किंतु इस कलयुग में व्यक्ति अयोग्य होते हुए भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से केवल मुक्त नहीं होंगे, वो ब्रज प्रेम को भी प्राप्त होंगे। ये चैतन्य महाप्रभु का विशेष वरदान है। तो इसलिए इस कलयुग के लोग धन्य हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हैं, श्री चैतन्य चंद्र के चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि अब युग धर्म प्रवर्तन का समय भी हो गया, इसलिए मुझे एक साथ ये सारे कार्य करना है, युग धर्म भी प्रवर्तन करना है और उसके साथ साथ भक्ति की शिक्षा देनी है इस कलयुग के लोगों को, और इस भक्ति की शिक्षा के माध्यम से, हरिनाम के माध्यम से उनको ब्रज प्रेम भी प्रदान करना है। यद्यपि हर कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन होता है, तो भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि युग धर्म प्रवर्तन है अंश है थे, युग धर्म का प्रवर्तन मेरा कोई भी अंश कर सकता है, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है युग धर्म प्रवर्तन करने के लिए, मेरा कोई भी अंश विस्तार रूप युग धर्म का प्रवर्तन कर सकता है, किंतु आमाविना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते, किंतु मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई व्रज प्रेम प्रदान नहीं कर सकता, दूसरा कोई अवतार ब्रज प्रेम प्रदान करने में समर्थ नहीं है भगवान कृष्ण के अतिरिक्त। और वो भगवान श्री कृष्ण कैसे ब्रज प्रेम प्रदान कर रहे हैं, यह भी एक विलक्षण कारण है। वो कृष्ण के रूप में ब्रज प्रेम नहीं दे रहा है। तो ये जो तीन कारण बताए, बाह्य कारण कि युग धर्म प्रवर्तन भगवान के अवतार का उद्देश्य युग धर्म प्रवर्तन करना है, उसके साथ साथ ब्रज प्रेम प्रदान करना है और भक्ति की शिक्षा देनी है, और एक कारण रह गया है जिसको कहा गया है, ये बाह्य कारणों में एक मुख्य कारण है कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से पहले तो भगवान ने अपने गुरुजनों को आदेश दिया पहले अवतरित होने के लिए, तो अद्वैत आचार्य महाविष्णु अद्वैत आचार्य के रूप में अवतरित हुए। तो वही अद्वैत आचार्य जब उन्होंने देखा कि सारा संसार कृष्ण भक्ति विहीन है तो उनके मन में बहुत दुख हुआ, क्योंकि अद्वैत आचार्य भक्त अवतार थे। पंच तत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। तो ये भक्त अवतार थे, जबकि स्वयं महाविष्णु हैं किंतु भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में अवतरित हो रहे हैं भक्ति की शिक्षा देने के लिए। तो इसलिए उनके जितने पार्षद हैं कृष्ण लीला में, कृष्ण के जितने पार्षद थे सभी चैतन्य लीला में अवतरित हुए। तो महाविष्णु भी अवतरित हुए इस कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए चैतन्य लीला में अद्वैत आचार्य के रूप में। तो अद्वैत आचार्य ने देखा कि सारा संसार भक्तिहीन है और लोग दूसरे कार्य में लगे हुए हैं, कर्म कांड में ज्ञान कांड में लगे हुए हैं, कोई भक्ति नहीं कर रहा है, भक्ति के प्रति आग्रह नहीं है। केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग, सभी विषय भोग में लगे हुए हैं। कोई पाप करके विषय भोग कर रहा है, कोई पुण्य कार्य करके विषय भोग कर रहा है, और इस प्रकार भक्ति गंध नहीं जाते जाए भव रोग। तो ये भव संसार का जो रोग है, ये रोग तभी तक दुरीभूत नहीं होगा जब तक कोई भक्तियों का अभ्यास नहीं करता। चाहे कोई कितना भी पुण्य कर ले, ये भव रोग से मुक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए लोको गति देखी आचार्य करुण हृदय, लोगों की गति देखकर कि लोग कहाँ जा रहे हैं, भक्ति विहीन होकर विषय भोग में लिप्त हैं, इसलिए इनका भव रोग दूर नहीं हो पाएगा, ये लोग कष्ट जन्म जन्मांतर भोग करते रहेंगे। इसको देखकर करुण हृदय अद्वैत आचार्य, जिनका हृदय करुणा से भरा था, तो ये लोगों के दुख देखकर सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए विचार करने लेकर कैसे हित है, लोगों का हित कैसे होगा, कैसे विषय भोगों से लोग भक्ति की ओर आकृष्ट होंगे, कैसे संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे, इसके लिए अद्वैत आचार्य चिंतित हो रहे हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि कैसे लोगों का उद्धार होगा, तो सोच रहे हैं कि आपन ही श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, यदि स्वयं श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करेंगे तब क्या होगा। आपने आचरि भक्ति करे न प्रचार, यदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतार लेंगे और स्वयं अपनी भक्ति का आचरण करके लोगों को सिखाएंगे तब जाकर कलयुग के लोग कुछ सीख सकेंगे, कुछ भक्ति को भक्ति का आचरण कर सकेंगे। नाम वेणु कली काले नहीं धर्म हार, इस कली काल में और कोई दूसरा धर्म नहीं है, केवल हरिनाम ही एकमात्र धर्म है। हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते एव नास्ते एव नास्ते एव गतिरन्यथा। तो ये कलयुग में हरिनाम के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है, यही एकमात्र धर्म है कलयुग। तो अत्यंत आचार्य सोच रहे हैं कि कली काले कैसे हवे कृष्ण अवतार, तो इसलिए कलयुग में कैसे भगवान का अवतार होगा। तो यह सोचकर शुद्ध भावे करीब कृष्ण आराधन निरंतर शयन में करीब निवेदन। तो अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं कि मैं शुद्ध रूप से भगवान कृष्ण की आराधना करूंगा, पूजा करूंगा और निरंतर नित्य निरंतर विनती पूर्वक दैन्यता पूर्वक भगवान से मैं निवेदन करूंगा। क्या निवेदन करेंगे? अन्य कृष्ण रे करो कीर्तन संसार, यही निवेदन करूंगा कि भगवान कृष्ण अवतरित हो इस कलयुग में और कीर्तन का नाम संकीर्तन का संचार करे, नाम संकीर्तन का प्रचार करे। तबे तो से अद्वैत नाम सफल आमार, यदि मैं इतना कर सकूंगा, यदि मैं भगवान कृष्ण की पूजा करके उनको उनकी प्रार्थना करते हुए उनको अवतरित करा दूंगा इस कलयुग में कीर्तन का प्रचार करने के लिए, तो मेरा अद्वैत नाम सफल हो जाएगा। गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण कृष्ण पाद पद्म भावी करे समर्पण। तो अद्वैत आचार्य क्या कर रहे हैं, गंगा जल और तुलसी मंजरी लेकर शालिग्राम शिला की पूजा कर रहे हैं, नित्य प्रति गंगा जल और तुलसी मंजरी दे रहे हैं शालिग्राम के ऊपर और यही प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण के अवतरित होने के लिए। कृष्ण पाद पद्म भावी करे समर्पण, कृष्ण आह्वान करे करिया हुंकार एमते कृष्ण कराए अवतार। तो कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करते हुए इस प्रकार गंगा जल और तुलसी मंजरी अर्पण कर रहे हैं और हुंकार कर रहे हैं, जिस हुंकार की ध्वनि से भगवान श्री कृष्ण गोलोक बिहारी कृष्ण गोलोक में रहकर उस ध्वनि को श्रवण कर रहे हैं कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, अवतरित होने के लिए मेरी आराधना कर रहा है। तो चैतन्य एमते कृष्ण करा इला अवतार, तो अद्वैत आचार्य ने इस प्रकार भगवान कृष्ण का को अवतरित करवाया, क्योंकि भगवान कृष्ण अद्वैत आचार्य की हुंकार ध्वनि श्रवण करते हुए गोलोक में रह नहीं सके। अब उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे जाना ही होगा, पहले सोच रहे थे आने के लिए, अब अद्वैत आचार्य की हुंकार की ध्वनि सुनाई पड़ी गोलोक वृंदावन में, तो उनसे रहा नहीं गया। तो इस प्रकार चैतन्य अवतार यही मुख्य हेतु, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण के अवतार का यही मुख्य कारण बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। भक्तेर इच्छाए अवतरे धर्म सेतु, भक्त की इच्छा से धर्म के रक्षक धर्म वर्मणि भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। तो भक्त की इच्छा ही सर्वोपरि है, भगवान की इच्छा से भक्त की इच्छा और अधिक है। इसको मुख्य कारण बता रहा है चैतन्य अवतार के। तो ये जो चार कारण हमने बताए या श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, ये चारों कारण श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण है, ये अंतरंग कारण नहीं है, ये बाह्य कारण। ये सब कई कारण, क्योंकि भगवान जब कोई कार्य करते हैं एक साथ कई उद्देश्य साधित होते हैं उसके द्वारा। तो भगवान ने अवतार लिया और कई उद्देश्य को साधित किए, तो ये चार उद्देश्य हुए बाह्य उद्देश्य जो बाह्य कारण में गिनाए गए। अब हम श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के अंतरंग कारण पर चर्चा करेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु के वस्तुतः अवतार का मुख्य गूढ़ कारण क्या थे, जिसके लिए श्री भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के रूप में अवतरित हुए। ये तो ठीक है कि भक्ति की शिक्षा देने के लिए भक्त के रूप में अवतरित हुए, ब्रज प्रेम प्रदान करने के लिए वो अवतरित हुए, किंतु इसका गूढ़ कारण क्या था, क्यों उन्होंने भक्त के रूप में अवतरित होने के लिए सोचा, क्यों भक्ति प्रदान करने के लिए सोचा, इसके गूढ़ कारण क्या थे, यह भी जानना आवश्यक है। यह वस्तुतः ये जो बाह्य कारण बताए गए हैं ये कारण दूसरों के लिए है, साधारण जनता के लिए, दूसरों के लिए ये कारण बताए गए, दूसरों के उपकार के लिए भगवान अवतरित हुए, भक्ति की शिक्षा देना, ब्रज प्रेम प्रदान करना, युग धर्म प्रवर्तन करना या भक्त का आह्वान, ये सब दूसरों के कारण। किंतु ये जो अंतरंग कारण अब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताने जा रहे हैं, ये अंतरंग कारण इसलिए अंतरंग है, इसलिए गूढ़ है, क्योंकि ये भगवान के निजी कारण है, ये अपने लिए भगवान अवतरित हुए। ये जो बाह्य कारण तो जनता के लिए, दूसरे लोगों के लिए, किंतु ये अंतरंग कारण अपने लिए, ये भगवान कृष्ण के निजी कारण है। तो ये निजी कारण भगवान का क्या हो सकता है, जो भगवान पूर्ण आत्मा राम है, जो आत्मा में रमण करते हैं, तो उनका फिर क्या कारण हो सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने भक्त के रूप में अवतरित होने के लिए, और जो श्याम सुंदर थे वो क्यों गौर सुंदर बने, उसका भी कारण क्या है। तो इसलिए ये भगवान के निजी कारण बताया गया है कि भगवान की तीन वांछा, तीन अभिलाषा, तीन कामनाएं अपूर्ण रह गई थी। जो सर्वकाम है, जिनकी कोई कामना अतृप्त नहीं रह जाती है, इनकी फिर तीन कामना अतृप्त रह गई। ये बड़ी विचित्र बात है। इसलिए कृष्ण को कहा गया है कि ये सर्व विरुद्ध धर्मस्य धर्ममय, ये विरुद्ध धर्म भी इनमें आश्रय करते हैं। जो सर्वकाम है ये फिर इनमें कुछ कामना रह गई। तीन वांछा, तीन अभिलाषा, तीन वंशा अभिलषी सचे गर्भे परकाशी संगे लया पारिषद गण। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि तीन वंशा के कारण, तीन अभिलाषा के कारण वो सती माता के गर्भ में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण, और संग में अपने पार्षदों को भी लाए। कृष्ण लीला में जो पार्षद थे उनको साथ लेकर आए। तो ये जो तीन कारण है उसके बारे में अब हम विचार करेंगे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भाषा में। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यही मत पूर्वे कृष्ण रसे रसदन जद्यपि करिला रस निर्जास सर्वण। भगवान श्री कृष्ण रस के सदन है, रस के घर है। सदन अर्थात गृह घर। तो इसलिए भगवान को रसो वैसा कहा गया। रस के मूर्तिमंत स्वरूप है, आनंद के मूर्तिमंत स्वरूप है, आनंद घन है। तो ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण जो रस के मूर्तिमंत स्वरूप है, रस के रस की खान है, यद्यपि उन्होंने रस का आस्वादन किया किसके साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ, माधुर्य रस का आस्वादन किया। माधुर्य एक निलय कृष्ण, माधुर्य के मूर्तिमंत स्वरूप, माधुर्य के घर, माधुर्य की खान भगवान श्री कृष्ण। तो उन्होंने रस का आस्वादन किया श्रीमती राधा रानी और गोपियों के साथ, माधुर्य रस का आस्वादन किया। तथापि नहीं तीनों वांछित पुराण, फिर भी उनकी तीन अभिलाषाएं, तीन कामनाएं पूर्ण नहीं हुई। तो ये अभिलाषाएं क्या थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तार ताहा आस्वादित यदि करिल जतन, तो जब उन तीन वंशाओं को, अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान कृष्ण सोच रहे थे, तो वो सोच रहे हैं, कृष्ण सोच रहे हैं। कृष्ण कहे अमी है रसेर निदान, कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं रस का निदान हूं, रस की सीमा हूं, रस का मूर्तिमंत स्वरूप हूं। मैं सारे रसों का स्रोत हूं। पूर्णानंद मया अमी चिन्मय पूर्ण तत्व, मैं पूर्ण आनंदमय हूं, चिन्मय हूं और पूर्ण तत्व हूं, मैं हर तरह से पूर्ण हूं। किंतु मैं पूर्ण होते हुए भी राधिकार प्रेमे आमे कराय उन्नत उन्मत, किंतु मैं यद्यपि स्वयं संपूर्ण हूं, अपने आप में पूर्ण हूं, किंतु राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त करा रहा है। तो यह कैसे हो सकता है कि यद्यपि मैं पूर्ण हूं फिर भी राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त करा रहा है? तो यह कैसे संभव है? वस्तुतः श्रीमती राधा रानी और कृष्ण में कोई भिन्नता नहीं है, अन्यथा कौन भगवान कृष्ण को उन्मत्त करा सकता है? और कोई जीव, कोई व्यक्ति संसार का भगवान को उन्मत्त नहीं करा सकता। तो वो अपने ही विस्तार रूप है भगवान कृष्ण के श्रीमती राधा रानी। जिस प्रकार बलराम जी भगवान कृष्ण के विस्तार रूप है, दक्षिण अंग से बलराम जी निकलते हैं, बाम अंग से श्रीमती राधा रानी। तो राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, अनन्य विलास रस आस्वादन करी। तो राधा और कृष्ण एक ही आत्मा है, इनमें कोई अंतर नहीं है, किंतु वो दो देह धारण किए हुए, दो शरीर धारण किए हुए। किस लिए दो शरीर धारण किए हुए हैं? अनन्य विलास रस आस्वादन करी, रस आस्वादन करने के लिए, माधुर्य रस का आस्वादन करने के लिए ये एक आत्मा दो शरीर हो गए, एक राधा रानी के रूप में, एक कृष्ण के रूप में। ये माधुर्य रस का आस्वादन करने के लिए भगवान का ये दो रूप है, एक से दो हुए हैं। और चैतन्य अवतार में वही दोनों मिलकर एक हो गए, राधा कृष्ण का मिलित तनु शरीर श्री गौरांग। तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं यद्यपि पूर्ण अपने आप में पूर्ण हूं, फिर भी राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त करा रहा है। ये कैसे संभव है? नादानी राधार प्रेमे आछे कत बल। मैं नहीं जानता हूं कि राधा रानी के प्रेम में कितना बल है, कितनी शक्ति है, जिसके कारण जे बले हमारे करे सर्वदा विभव। राधा रानी के प्रेम में इतना बल है, शक्ति है, कि उनका प्रेम मुझे विभव कर रहा है। मैं राधा रानी के प्रेम में विभोल हो रहा हूं। राधिकार प्रेम गुरु अमी शिष्य नट। तो भगवान कृष्ण कहते हैं इससे तो यही पता चलता है कि राधा रानी का जो प्रेम है मेरे प्रति, वही प्रेम ही मेरे गुरु हैं। और मैं नट, मैं नर्तक हूं, मैं शिष्य हूं राधा रानी के प्रेम का। राधा रानी का प्रेम गुरु है, मैं शिष्य हूं और नर्तक के समान। इस प्रकार गुरु जो आदेश देते हैं शिष्य को ऐसा करना पड़ता है, तो राधा रानी का प्रेम यदि गुरु, तो मैं उनके प्रेम का शिष्य हूं। तो सदा मा नाना नृत्य नाचा है उद्भट। तो इसलिए राधा रानी का प्रेम सदा सर्वदा मुझे नचा रहा है, मैं उन्मत्त होकर राधा रानी के प्रेम में मैं नृत्य कर रहा। निज प्रेमास्पद मोर है जे आह्लाद, ताइते कोटि गुण राधा प्रेमास्वाद। और अपने प्रेम के आस्वादन में मुझे जितना आनंद प्राप्त हो रहा है, उससे कोटि गुना आनंद राधा रानी को प्राप्त होता है। राधा रानी मेरे प्रेम में मुझसे कोटि गुना अधिक आनंद को प्राप्त होती है। इसलिए मेरे आनंद राधा रानी के आनंद के समकक्ष नहीं है। क्यों समकक्ष नहीं है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आमी जैसे परस्पर विरुद्ध धर्मास्वय, राधा प्रेम तैसे सदा विरुद्ध धर्ममय। कि जिस प्रकार मुझ में विरुद्ध धर्म का निवास होता है, कि मैं पूर्णानंद हूं फिर भी अपूर्ण हूं, उसी प्रकार राधा रानी भी विरुद्ध धर्म में है। कभी राधा रानी कृष्ण से प्रेम पूर्वक अपने को समर्पित कर देती है और कभी मान कर बैठती है। भगवान कृष्ण को राधा रानी के चरण पकड़ना पड़ता है मनाने के लिए। तो इसलिए राधा रानी के प्रेम की वक्र गति गई, ये कहा गया है। प्रेम की गति वक्र होती है, ये सीधा नहीं होता। तो राधा प्रेम विभुजारे बाहित नहीं ठाए, तथापि से क्षण क्षण बढ़े सदाए। राधा रानी का प्रेम स्वयं कृष्ण सोच रहे हैं कि राधा रानी का प्रेम प्रेम की सर्वोच्च सीमा है और उसकी वृद्धि होने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च सीमा को जो प्रेम प्राप्त हुआ हो फिर उसकी वृद्धि कैसे हो सकती है। किंतु फिर भी राधा रानी के प्रेम में वृद्धि होती रहती है, ये भी एक विरुद्ध धर्म है कि जब वो सर्वोच्च सीमा को प्राप्त है वृद्धि होने की कोई संभावना नहीं है, तभी तो सर्वोच्च कहा गया है, सीमा कही गई है प्रेम की सीमा, किंतु फिर भी उसमें वृद्धि हो रही है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तथापि इसे क्षण क्षण बढ़े सदाई, उस प्रेम में क्षण क्षण पर वृद्धि होती है। तो इसका अर्थ है कि राधा रानी के प्रेम की कोई सीमा नहीं है, जब वृद्धि होती है तो फिर क्या सीमा हो सकती है। तो भगवान कृष्ण अब सोच रहे हैं कि क्यों राधा रानी अधिक प्रेम का आस्वादन करती है और मैं क्यों नहीं कर पाता। तो कहते हैं सही प्रेमार श्री राधिका परम आश्रय। तो ये जो प्रेम है राधा रानी का प्रेम, उस मेरे प्रति जो प्रेम है उस प्रेम का परम आश्रय श्रीमती राधा रानी है। क्यों? जो प्रेम करता है वही आश्रय हो सकता है, जिसमें प्रेम भावना है वही प्रेम का आश्रय है, जहां प्रेम आश्रित होकर रहता है और जिसके प्रति प्रेम किया जाता है उसको वह प्रेम का विषय है। इस प्रकार राधा रानी कृष्ण से प्रेम करती है तो राधा रानी उस प्रेम कृष्ण प्रेम का आश्रय है और कृष्ण उस प्रेम का विषय है। तो इसलिए भगवान कृष्ण सोचते हैं कि सेई प्रेमार राधिका परम आश्रय, सेई प्रेमार आमी हई केवल विषय। तो राधा रानी में जो प्रेम मेरे प्रति है कृष्ण प्रेम, उसका आश्रय राधा रानी है, मैं उस प्रेम का विषय हूं। विषय जातीय सुख अमार आश्रव आमा हईते कोटि गुण आश्रय आह्लाद। यह ठीक है कि मुझे कोई प्रेम करता है मुझे आनंद प्राप्त होती है उससे, किंतु उससे मैं जो आनंद प्राप्त करता हूं विषय होकर, प्रेम का विषय होकर मैं जो आनंद प्राप्त करता हूं उससे अधिक आमा है इते कोटि गुण आश्रय आह्लाद। जो प्रेम कर रहा है मुझे उसका आनंद मुझसे कोटि गुना अधिक है, क्योंकि जो भगवान से प्रेम करता है उसका आनंद वस्तुतः अधिक होता है, भगवान से अधिक होता है। और ऐसे प्रेम करने वाले में राधा रानी का प्रेम सर्वोच्च, इसलिए राधा रानी को भगवान कृष्ण के सर्वोच्च भक्त भी कहा गया है। तो ये कृष्ण प्रेम के परम आश्रय है श्रीमती राधा रानी। आश्रय जातीय सुख पाईते मन धाय, इसलिए मेरा जो मन है मैं प्रेम का विषय होने के कारण उस प्रेम का आस्वादन पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा, इसलिए मेरा मन उस आश्रय स्थिति को प्राप्त करना चाहता है। श्रीमती राधा रानी जिस प्रकार प्रेम का आश्रय है, जब तक मैं प्रेम का आश्रय नहीं बनूंगा तब तक आश्रय जातीय प्रेम का सुख प्राप्त नहीं कर सकूंगा। यही कृष्ण में अभाव है, इसी अभाव का अनुभव कर रहे हैं भगवान कृष्ण। यदि वो पूर्णानंद में आत्मा राम है, अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में रमण करते हैं, फिर भी ये कामना भगवान कृष्ण की रह गई कि जब तक मैं मेरे प्रेम का आश्रय नहीं बन जाता हूं तब तक मैं उस प्रेम का आस्वादन नहीं कर सकता। जिस प्रेम का आस्वादन राधारानी करती है मुझसे अधिक कोटि गुना अधिक करती है, यदि मुझे उस प्रेम का आस्वादन करना है तो मुझे कोई आश्रय बनना है इस प्रेम का। तो जतने आस्वादित नारी की करी उपाय, मैं आस्वादन करना चाहता हूं आश्रय जातीय प्रेम का सुख, किंतु नहीं कर पा रहा हूं। कभू यदि यही प्रेमार है ये आश्रय, तबे यही प्रेमानंद अनुभव है। मैं कभी यदि इस प्रेम का आश्रय बन पाऊं तब इस प्रेम का आनंद अनुभव कर सकूं। एतो चिंती रहे कृष्ण परम कौतुकी हृदय बाड़े प्रेम लोभ धक धक। तो यह सोचकर परम कौतुकी कृष्ण हृदय में इस प्रेम का लोभ रह गया भगवान कृष्ण का, कैसे मैं आश्रय जातीय प्रेम का सुख प्राप्त करूंगा। तो ये प्रेम का लोभ रह गया। तो अतः इस लोभ के कारण श्रीराध है प्रणय महिमा किद्र शोभान एवा। इस श्रीमती राधिका का जो प्रणय महिमा है, प्रेम की महिमा है, वो कैसा है, वो महिमा कैसी है, यही एक वांछा, यही एक अभिलाषा कृष्ण की रह गई। क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण राधारानी के स्तर को नहीं आएंगे, राधारानी के भाव को अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक इस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये एक अभिलाषा रह गई, लोभ रह गया भगवान कृष्ण में कि राधारानी की प्रणय महिमा, प्रेम की महिमा किस प्रकार है। और दूसरी इच्छा जो है, कहते हैं कि श्री राधया प्रणय महिमा किद्र शोभान एवा सद्य जैनाद्भुत मधुरिमा किद्र शोभा मदीय। और भगवान श्री कृष्ण पुनः सोच रहे हैं कि ये तो एक अभिलाषा रह गई कि राधा रानी के आश्रय जातीय प्रेम सुख का आस्वादन मैं कैसे करूं, जब तक मैं राधा रानी की स्थिति को प्राप्त न हो जाऊं तब तक मैं इस आश्रय जातीय सुख को प्राप्त नहीं कर सकूं। तो इसलिए एक अभिलाषा रह गई और द्वितीय अभिलाषा सद्य जैनाद्भुत माधुरिमा किद्र शोभा मदीय। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि श्रीमती राधारानी में इतना प्रेम कहां से आया मेरे प्रति, क्योंकि वो मेरे माधुर्य का आस्वादन करती है, मेरे रूप माधुर्य का आस्वादन करती है। साध्य जैनाद्भुत मधुरिमा, मेरा जो रूप माधुर्य है ये माधुर्य की सीमा है। भगवान कृष्ण में जो चार कला अधिक होती है, भगवान विष्णु से भी अधिक, इसमें एक रूप माधुर्य है। तो भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ सुंदर पुरुष है और उनके रूप माधुर्य के प्रति श्रीमती राधारानी आकर्षित है। केवल श्रीमती राधारानी और गोपियां नहीं, सारा संसार भगवान कृष्ण के रूप माधुर्य के प्रति आकृष्ट है। और केवल मनुष्य नहीं, यहां तक कि पशु पक्षी भी भगवान कृष्ण के रूप माधुर्य के प्रति आकृष्ट, जो मनुष्यत्तर प्राणी है। तो मनुष्यों की बात क्या कहें, जब पशु पक्षी ही आकृष्ट हो जाते हैं भगवान कृष्ण के रूप माधुर्य के प्रति, तो फिर गोपियों का आकृष्ट होना कृष्ण के प्रति ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक है गोपियों का आकृष्ट होना। तो क्या पुरुष क्या स्त्री, हर कोई प्राणी कृष्ण के रूप के प्रति आकृष्ट है। और केवल इतना ही नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, यहां तक कि उनके विस्तार रूप, जैसे नारायण भगवान विष्णु है, ये भी कृष्ण के रूप के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। और यही कारण था कि द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे थे, द्वारका के एक ब्राह्मण के पुत्रों को महाविष्णु ने हरण कर लिया था, अपहरण कर लिया था कई पुत्रों को। इसलिए अपहरण किया था कि भगवान कृष्ण आए उनके पास ब्राह्मण के पुत्रों को उद्धार करने के लिए, तो मैं कृष्ण के रूप माधुर्य का दर्शन करूंगा, ये महाविष्णु का लोभ था। तो जब भगवान के विस्तार रूप को भी ये लोभ हो जाता है, फिर दूसरों की बात क्या कहें। और केवल इतना नहीं, भगवान के विस्तार रूपों की बात छोड़ दीजिए, यहां तक स्वयं भगवान कृष्ण को भी लोभ उत्पन्न हो जाता है अपने रूप माधुर्य का आस्वादन करने के लिए। तो एक बार भगवान कृष्ण ने मणिमय स्तंभ पर अपने रूप माधुर्य का दर्शन किया। तो जब भगवान कृष्ण ने अपने रूप माधुर्य का दर्शन किया, मणिमय स्तंभ में उनकी प्रतिमूर्ति दिख रही थी स्तंभ में, जिस प्रकार हम दर्पण में देखते हैं अपना रूप, तो भगवान ने देखा अपने रूप को स्तंभ में प्रतिफलित होते हुए। तो अपने रूप को पहचान नहीं पा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कहते हैं अपरिकलित पूर्व का चमत्कारकारी, कि ऐसा रूप मैंने पहले कभी देखा नहीं है, कोई अपने रूप को देख नहीं सकता। तो भगवान कृष्ण का यह कहना है स्वाभाविक भी है। तो कहते हैं अपरिकलित पूर्व का चमत्कारकारी, ऐसा चमत्कारकारी रूप, रूप माधुर्य मैंने पहले कभी देखा नहीं है। स्फुरति मम गरियान ऐसा माधुर्य पुरा, कि ऐसा माधुर्य रूप माधुर्य जो मुझसे भी अधिक है, अपने रूप को देख रहे हैं किंतु कहते हैं कि मेरे रूप माधुर्य से ये जो रूप माधुर्य मैं देख रहा हूं स्तंभ में प्रतिफलित हो रहा है, वो नहीं सोच रहे हैं कि यह अपने रूप का प्रतिफलन है। तो कहते हैं कि ऐसा रूप माधुर्य स्फुरति मम गरियान, ये मेरे रूप माधुर्य से ऐसा माधुर्य अधिक है, इसके सामने मेरा रूप माधुर्य तुलनीय नहीं है, ऐसा सोच रहा है। तो उनको ऐसा ध्यान में आया कि ये जो रूप माधुर्य कितना आकर्षक है, स्वयं अपने रूप में मोहित हो रहे हैं भगवान। तो फिर उनको ध्यान आता है, सोचते हैं कि मुझसे तो कोई बड़ा नहीं हो सकता, मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो गीता में कहते हैं कि मुझसे तो कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता या मेरा समकक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान को इसलिए असमर्थ कहा गया है, असम और ऊर्ध्व, कोई भगवान का समकक्ष नहीं हो सकता और ऊर्ध्व भी अधिक नहीं हो सकता। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं यदि मुझसे कोई बड़ा रूपवान नहीं है, अधिक रूपमान नहीं है, तो क्या ये रूप मेरा है? अयं अहं ऐसा सोच रहा है कि यह रूप अहम, यह रूप अयं रूप अहम, क्या मैं हूं? अपि हम तो प्रेक्षय लुब्ध चेता। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि यदि ये रूप मेरा है तो इस रूप को, रूप का दर्शन करने के लिए प्रेक्षय लुब्ध चेता, मेरे मन में लोभ उत्पन्न हो रहा है, मेरे मन में ये कामना उत्पन्न हो रही है। सारा वसंग उपभोक्तुं काम ये राधिके। इस प्रकार राधारणी कितनी भाग्यशालिनी है, मैं मेरे रूप को देख नहीं सकता। आज स्तंभ में मेरे रूप को देखा, किंतु राधारणी सर्वदा मेरे रूप का दर्शन करती है, कितनी भाग्यशालिनी है। तो मेरे रूप माधुर्य का वो सदा सर्वदा हर पल हर क्षण उपभोग कर रही है, इसलिए मेरे मन में भी यही इच्छा हो रही है। सारा वसंग उपभोक्तुं काम ये राधिके, मैं राधिका के समान मेरे रूप का मैं उपभोग करना चाहता, मेरे रूप माधुर्य का उपभोग करना चाहता। तो ये दूसरा लोभ, दूसरी कामना भगवान कृष्ण ने उत्पन्न हो गई, अपने रूप माधुर्य का आस्वादन करना चाह रहे हैं। साध्य जैनाद्भुत मधुरिमा किदृशो वा मदीय, कि मेरे रूप माधुर्य कैसा है ये जानने की इच्छा, अनुभव करने की इच्छा। ये दूसरी कामना, दूसरा लोभ जन्म ले लिया भगवान के मन में। तो पुनः कहते हैं, सौख्यं चास्य मदनुभवत किदृशो व्यक्ति लोभात। तो ये राधा रानी मेरे प्रेम में उन्मत्त है, सदा सर्वदा मेरे रूप माधुर्य का आस्वादन कर रही है, और सौख्यं चास्य मदनुभवत किदृशो व्यक्ति लोभात। तो श्रीमती राधारानी ये तीसरी अभिलाषा है भगवान कृष्ण की, कि मेरे प्रेम में वो कैसा सुख आस्वादन करती है। ये राधारानी के मन में कैसे भावों का उदय होता है, उनका कैसा अनुभव है मेरे प्रेम सुख का अनुभव, मैं इसको जानना चाहता। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, काम गंध हीन स्वाभाविक गोपी प्रेम, जो गोपियों का प्रेम जो है मेरे प्रति, ये काम गंध हीन प्रेम है। काम का कोई गंध ही नहीं है, सांसारिक जो काम वासना है इसका लेश मात्र गंध ही नहीं है गोपी प्रेम में। साधारण रूप से लोग समझ नहीं पाते हैं गोपी प्रेम को, वो सोचते हैं जैसे साधारण पुरुष स्त्री या युवक युवती में प्रेम होता है, उसी प्रकार गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम था। वो ऐसा प्रेम नहीं है। काम गंध सांसारिक प्रेम, सांसारिक संपर्क वस्तुतः तो वो प्रेम नहीं है, वो काम है, काम गंध से युक्त है, उसमें प्रेम भावना नहीं है। किंतु गोपियों का प्रेम काम गंध से हीन है, उसमें काम और प्रेम किसको कहा जाता है, कि कृष्णेन्द्रिय प्रतिवंशा तारे बोले प्रेम, आत्मेन्द्रिय प्रतिवंशा तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रतिवंशा धरे प्रेमना। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों की प्रीति के लिए कार्य करता है या संपर्क स्थापन करता है उसको काम कहा जाता है। तो संसार में देखा जाता है पुरुष और स्त्री में अपनी इंद्रिय प्रीति की वांछा है, कैसे अपने आप सुख प्राप्त करें, हमारे सुख में कोई बाधा उत्पन्न हो गई, संपर्क छिन्न हो गया, सांसारिक संपर्क, तो ये काम गंध से युक्त है, इसलिए इसको काम कहा जाता है, जिसमें अपनी इंद्रिय प्रीति ही सर्वोपरि है। किंतु कृष्णेन्द्रिय प्रतिवंशा धरे प्रेम नाम, जब कृष्ण की इंद्रिय प्रीति की कामना होती है, अपनी इंद्रिय प्रीति की कामना नहीं है, चाहे मुझे कितना भी कष्ट क्यों ना हो किंतु कृष्ण को कैसे सुख प्राप्त हो, ये जो कामना कृष्ण की इंद्रिय प्रीति की कामना है, जहां अपने सुख की कामना नहीं है वही वास्तविक प्रेम है। तो ये जो कृष्ण प्रेम, गोपियों का कृष्ण प्रेम, ये निर्मल प्रेम है, शुद्ध प्रेम है। इसमें गोपियों का कोई इंद्रिय प्रीति की कामना नहीं थी कि हमें सुख प्राप्त होगा इसके लिए हम कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, ये बात नहीं थी, केवल कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए कि कृष्ण को कितना सुख प्राप्त होगा, इसलिए गोपियां श्रृंगार करती थी अपने लिए नहीं कृष्ण के लिए, कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए। तो इसलिए गोपियों का जो प्रेम, गोपियों का जो त्याग, यहां तक कि समाज का भय, समाज धर्म, पारिवारिक धर्म, वेद धर्म, किसके प्रति उनको खातिर नहीं थी, चाहे कोई हमें बदनाम करे, कुछ बोले, किंतु हम कृष्ण की सेवा में ही अपने जीवन को समर्पित कर दें, ये समर्पण जो भावना उनमें थी, यही समर्पण की भावना के कारण भगवान कृष्ण अपने को ऋणी मानते थे गोपियों के प्रेम के सामने, इसलिए गोपियों को सर्वश्रेष्ठ भक्त कहा गया है। और भगवान को यह कहना पड़ा, न पा रहे हम निरवध संयुजा स्वसाधु कृत्यं विबुधा ऐसा पिबा, हे गोपीगण तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान मैं नहीं दे सकता, न पा रहे हम, जो सर्वसमर्थमान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है वो कह रहे हैं कि मैं असमर्थ हूं तुम्हारे प्रेम के प्रतिदान देने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी रह गया, इस ऋण को चुकाने के लिए यदि मैं प्रयत्न भी करूं, और कहां तक प्रयत्न करूं, एक जन्म नहीं कई वर्षों तक नहीं, विविधा साथ ही वह देवताओं के मुख्य ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी की आयु तक यदि मैं प्रयास भी करूं, ब्रह्मा की आयु बहुत लंबी होती है, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे ब्रह्मा का एक दिन 1000 दिव्य युग, तो इस प्रकार ब्रह्मा के 30 दिनों में एक महीना और 12 महीने में एक वर्ष, और ब्रह्मा जी इस प्रकार 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा की आयु तक यदि मैं प्रयास भी करूं फिर भी तुम्हारा ऋण मैं चुका नहीं सकता, इसलिए है गोपियां मैं तुम्हारे सामने हार मानती हूं, और तुम्हारा जो साधु कृत्य है, साधु कृत्य क्या है कि मेरे प्रति तुम लोगों का तुम लोगों की जो समर्पण की भावना है, ये साधुकृत ही तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान है। तुम्हारा ही साधुकृत तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान है। मैं तो चुका नहीं सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये भगवान कृष्ण अपने को ऋणी मान रहे हैं, इसलिए गोपियों को श्रेष्ठ भक्त माना गया है। और इन गोपियों में श्रेष्ठ श्रीमती राधारानी है, तो इसलिए श्रीमती राधारानी काम गंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम निर्मल उज्जवल शुद्ध जन दग्ध हेम। तो गोपियों का प्रेम, श्रीमती राधारानी का प्रेम शुद्ध सोने के समान है। जैसे अग्नि में हम सोने को डाल देते हैं तो उसमें कुछ अशुद्धता अगर रही होगी तो शुद्ध हो जाता है सोना अग्नि में पड़ने पर। उसी प्रकार गोपियों का प्रेम शुद्ध प्रेम है, काम गंधहीन प्रेम है। केवल कृष्ण प्रीति ही जिनका एकमात्र काम है। कृष्ण सहाय गुरु बांधव प्रेयसी, गोपिका है न प्रिया शिष्या सखी दासी। तो भगवान कृष्ण के ये गोपियां सब कुछ है। उनके कभी प्रेम गुरु बनकर भगवान कृष्ण को नचाते रहते हैं अपने प्रेम के बल पर, कभी कृष्ण की शिष्या भी बन जाती हैं, कभी उनके सखी दासी। इस प्रकार प्रिया हर तरह से कृष्ण के सेवारस का आस्वादन करती हैं गोपियां। गोपी का जाने में कृष्ण और मने रवांछित, और गोपियों को कृष्ण के मनोभाव पता है कि कृष्ण क्या चाहते हैं, गोपियां ही जानती हैं और कोई नहीं जान सकता। प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समाहित, और गोपियों की जो प्रेम सेवा है ये सबसे विलक्षण है, श्रेष्ठ है। तो इसलिए भगवान कृष्ण सोच रहेंगे से ही गोपीगण मध्य उत्तम राधिका रूपे गुणे सौभाग्य प्रेमे सर्वाधिका। सारे गोपियों में श्रीमती राधारानी सर्वश्रेष्ठ हैं, सौभाग्य में, रूप में, गुणों में और प्रेम में श्रीमती राधारानी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो कह रहे हैं कि कृष्ण विचार एक आश्चर्य अंतर है। भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं कि पूर्णानंद पूर्ण रस रूप कहे मोगरे, तो लोग मुझे पूर्णानंद पूर्ण रसमय कहते हैं, और आमा रहते आनंदित है त्रिभुवन, हमसे सारा त्रिभुवन आनंदित हो रहा है हमारे रूप माधुर्य का दर्शन करके। आमा के आनंद जीवे अच्छे कोनो जान, किंतु हमें कौन आनंद प्रदान कर सकता है इस संसार में। सारा संसार हमसे आनंद को प्राप्त हो रहा है, किंतु हमें कौन आनंद प्रदान कर सकता है। आमा है इसे गुणी बड़ा जगत असंभव, एकली राधिका ताहा करी अनुभव। किंतु हमसे कोई बढ़कर गुणी होगा इस जगत में असंभव है, किंतु श्रीमती राधारानी हमारे प्रेम रस का वो आस्वादन करती है। मोर रूपे आताई तो है त्रिभुवन, राधा र दर्शन मोर जुड़ाए न है। तो मेरे रूप के दर्शन में त्रिभुवन आताई तो हो रहा है, और श्रीमती राधारानी के दर्शन में मेरे नेत्र आताई या सुखी हो रहे हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि आमा है इते राधा पाए जे जातीय सुख, ताहा आस्वादिते आमी सदाई उन्मुख। तो हमसे श्रीमती राधारणी जो सुख को प्राप्त होती है, उसी सुख को प्राप्त होने के लिए मैं सर्वदा उन्मुख हूं, सर्वदा कामना करता हूं। नाना जत्न करी आमी नारी आस्वादित है, सही सुख माधुर्य ग्रहणी लोभो बाढ़े चाहते। यद्यपि मैं बार बार प्रयास करता हूं उस सुख का आस्वादन करने के लिए, किंतु फिर भी उस सुख का आस्वादन नहीं कर पा रहा हूं। और राधा के सुख माधुरी आस्वादन करने के लिए हमारे मन में लोभ उत्पन्न हो रहा है। राधिकार भाव कांति अंगीकार बिन सही तीनों सुख कबू नहे आस्वादन। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि इस कृष्ण रूप में मेरे मन में जो तीन लोभ उत्पन्न हुए हैं, तीन कामना उत्पन्न हुई है, तीन अभिलाषा उत्पन्न हुई है, तो मैं कृष्ण रूप में इन अभिलाषाओं को पूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए मुझे राधारणी के स्तर तक जाना होगा, राधारणी के भाव को अंगीकार करना पड़ेगा। इस कृष्ण भाव में मेरी कामना पूर्ण नहीं होगी, तो राधा रानी के भाव में ही इन कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। अतः कह रहे हैं कि राधिकार भाव कांति अंगीकार विनय सही तीन सुख कबू नहे आस्वादने। श्रीमती राधा रानी के भाव और उनकी अंग कांति को अंगीकार स्वीकार किए बिना ये तीन प्रकार के सुख मेरा आस्वादन नहीं होगा। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं यदि राधारणी जो सुख को प्राप्त हो रही है, यदि मुझे उस सुख को प्राप्त करना है तो मुझे राधारणी के भाव को अंगीकार करना है, और राधारणी की अंग कांति को अंगीकार करना है, तब जाकर मैं इन तीन सुख को आस्वादन कर सकता हूं। राधा भाव अंग करी धरी तार वर्ण तिनी सुख आस्वादित हवो अवतीर्ण। तो भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं अब राधा रानी के भाव को अंगीकार करूंगा। राधा रानी के भाव क्या थे? सदा सर्वदा कृष्ण का विरह अनुभव करते थे राधारानी, कृष्ण कृष्ण कहकर वो विभो प्रेम विभोल हो जाती थी। तो इसी भाव को भगवान कृष्ण अंगीकार कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसलिए जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो सदा सर्वदा कृष्ण का विरह अनुभव करते रहे, कथा कृष्ण कथा कृष्ण, मेरे कृष्ण कहाँ है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार प्रलाप करते थे, कहाँ कुरुक्षेत्र आयलाम कहाँ वृंदावन, मेरा वृंदावन कहाँ है, मैं कहाँ कुरुक्षेत्र में आ गया। तो राधारानी के जो भाव उत्पन्न होते थे, कुरुक्षेत्र में जब राधारानी गई थी कृष्ण का दर्शन करने के लिए, उस समय इस प्रकार भाव का उदय हुआ था राधारानी के मन में कि कहाँ कुरुक्षेत्र में मैं आ गई, कहाँ वृंदावन रह गया। तो चैतन्य महाप्रभु के मन में उसी प्रकार के भाव का उदय हो रहा। तो भगवान कृष्ण राधारानी के भाव को अंगीकार करके और राधारानी के अंग कांति राधा भाव द्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपकम, राधारानी के भाव और द्युति अंग कांति, तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांग। तो भगवान श्याम सुंदर से गौर सुंदर बन गए क्योंकि वो राधारानी की अंग कांति को स्वीकार किए हुए थे। क्यों? यदि अंग कांति को स्वीकार नहीं करते तो तो चैतन्य लीला में भगवान श्री कृष्ण राधा भाव को भाव का आस्वादन नहीं कर सकता, क्योंकि राधा रानी के भाव में राधा रानी जिस प्रकार कृष्ण का विराह अनुभव कर रही थी, चैतन्य महाप्रभु उसी प्रकार राधा रानी के भाव में कृष्ण का विराह अनुभव कर रहे थे। और यदि उनके अपने अंग की कांति श्याम सुंदर होती तो उनको ये विराह अनुभव नहीं होता, इसलिए वो राधा रानी के अंग कांति को भी ग्रहण किए राधा रानी के भाव में, कहां मेरे श्याम सुंदर, तो कृष्ण का विराह अनुभव करते रहे। और इस राधा रानी के भाव की वृद्धि के लिए जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये तीन अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए अवतरित हुए, तो इन भावों में वृद्धि के लिए उनके साथ कौन रहे, ललिता और विशाखा। जिस प्रकार ललिता और विशाखा राधा रानी के साथ रहती थी सदा सर्वदा, उनको आश्वासन देती थी, जब राधा रानी कृष्ण का विरह अनुभव करती थी तो ये आश्वासन देती थी दोनों, तो उसी प्रकार श्री चैतन्य अवतार में जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे और राधा रानी के भाव में कृष्ण का विरह अनुभव करते हुए क्रंदन कर रहे थे, तो उनको आश्वासन देने के लिए ललिता विशाखा भी वहां उपस्थित थी। किस रूप में? स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के रूप में ये कृष्ण लीला का श्लोक उच्चारण करते थे ये दोनों, प्रसंग के अनुसार, भाव के अनुसार। और श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में क्यों रहे संन्यास लेने के पश्चात? सभी लोग जानते हैं कि माता के आदेश से श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करने गए थे, किंतु जगन्नाथपुरी में रहने का एक गूढ़ उद्देश्य था कि जगन्नाथपुरी विरह का क्षेत्र है, जहां जगन्नाथ श्याम सुंदर राधा रानी के विरह में महाभाव को प्रकाश किए हुए है, चक्षु विस्फारित हैं, हस्तपद संकुचित हुए हैं महाभाव में। जब भगवान कृष्ण द्वारका में राधा रानी के विरह में महाभाव को प्राप्त हुए थे, वही जगन्नाथ जी का रूप है, महाभाव रूप, कृष्ण का महाभाव प्रकाश रूप जगन्नाथ जी का रूप है, तो वही जगन्नाथ जी राधा रानी के विरह अनुभव कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में, इसलिए वहां पर राधा रानी नहीं है जगन्नाथ के मंदिर में, लक्ष्मी जी है, राधा रानी नहीं है, क्योंकि राधा रानी का विरह अनुभव कर रहे हैं, तो विरह का क्षेत्र है जगन्नाथपुरी। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु गए जगन्नाथपुरी में तो ये चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे, तो जगन्नाथ सदा सर्वदा राधा रानी का विरह अनुभव करते हुए हे राधे सदा सर्वदा विलाप कर रहे हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में हे कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कहकर विलाप कर रहे हैं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में कृष्ण का विरह अनुभव कर रहे हैं और जगन्नाथ राधा रानी का विरह अनुभव कर रहे हैं। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, वहां राधा कृष्ण का मिलन होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार गए जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ को देखते ही उन्होंने सोचा कि यही तो प्राण धन पाइनु, आज मैं मेरे प्राण धन को प्राप्त हो गया, श्याम सुंदर को प्राप्त हो गया, जहां भी नु मदन दहन झुरी गए, जिसके विरह में मदन के मन की ज्वाला से मैं व्यथित हो रही थी आज मेरे प्राण प्रिय श्याम सुंदर को मैं प्राप्त हो गया। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हुए जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए थे और वहीं अचेतन होकर गिर पड़े थे। तो यही चैतन्य महाप्रभु का भाव और जगन्नाथ जी का भाव। इसलिए रथ यात्रा के समय जब जगन्नाथ जी को गुंडीचा मंदिर अर्थात वृंदावन में ले आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं नृत्य और कीर्तन करते हैं जगन्नाथ जी के रथ के सामने, और उनका नृत्य कीर्तन देखने के लिए जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है। श्याम सुंदर राधा रानी का दर्शन कर रहे हैं और राधा रानी श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे हैं। दोनों के नेत्र दोनों के ऊपर स्थिर है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में लीला करते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की। जय श्री नित्यानंद प्रभु की। जय श्री जगन्नाथ स्वामी की। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। जय श्री कृष्ण बलराम की। जय श्री राधा श्याम सुंदर उल्टा विशाखा देवी की। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की। जय गौर भक्त वृंद की। जय श्री चैतन्य महाप्रभु शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। हिताय गौर प्रेमानंद हरि हरि ओम।